एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। आज ज्ञान गोष्ठी में हम एक ऐसे कह सकते हैं विलक्षण इंसान की बात करने वाली हैं, जिनकी प्रतिभा सिर्फ एक नहीं बल्कि गणित, विज्ञान और दर्शन तीनों ही दुनियाओं में फैली हुई थी। नाम है ब्लेज पास्कल।
बिल्कुल, ब्लेज पास्कल 17वीं सदी के फ्रांस के थे वो, 1623-1662। और देखिए, वो सिर्फ एक चीज नहीं थे, गणितज्ञ, भौतिक शास्त्री, आविष्कारक भी, लेखक और हाँ, कैथोलिक धर्मशास्त्री भी।
इतना कुछ एक ही व्यक्ति में?
हाँ, और उनका जो दौर था ना, वो यूरोप में बड़ी उथल पुथल का था। एक तरफ तो वो वैज्ञानिक क्रांति जोरों पर थी और दूसरी तरफ धार्मिक बहसें भी बहुत तेज थी। पास्कल इसी माहौल के बीच, कह सकते हैं तर्क और आस्था यानी कि दिमाग और दिल के बीच एक पुल बनाने की कोशिश कर रहे थे।
और मुझे लगता है यही कोशिश उन्हें आज भी इतनी प्रासंगिक बनाती है ना? हम आज पास्कल की जिंदगी और उनके जो मुख्य विचार हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास कुछ जीवनियां हैं, उनके काम का विश्लेषण है, देखते हैं कि उनकी सोच आज हमारे लिए क्या मायने रखती है।
हाँ, तो देखिए, 17वीं सदी का यूरोप वो कोई शांत समय नहीं था। एक तरफ तो गैलीलियो थे, केपलर थे, बाद में न्यूटन आए, ये लोग ब्रह्मांड को देखने का नजरिया ही बदल रहे थे। विज्ञान जो था वो पुराने विचारों को सीधी चुनौती दे रहा था।
सही कहा। और दूसरी तरफ का माहौल कैसा था, मतलब धार्मिक माहौल?
देखिए, फ्रांस में कैथोलिक चर्च के अंदर ही कुछ सुधार की लहरें उठ रही थी। इसी में एक धारा थी जेनसेनिज्म की। ये संत ऑगस्टीन की शिक्षाओं पर आधारित थी और काफी कठोर धार्मिक विचार थे इसमें। ये मानते थे कि इंसान सिर्फ ईश्वर की कृपा से ही मुक्ति पा सकता है और नैतिक जीवन में बहुत ज्यादा सख्ती होनी चाहिए। पास्कल का इस आंदोलन से बहुत गहरा जुड़ाव रहा।
ओहो, यानी एक तरफ विज्ञान का जोर और दूसरी तरफ इतनी गहरी, कह सकते हैं कठोर धार्मिक आस्था। पास्कल इसी माहौल में बड़े हुए।
हाँ बिल्कुल, और उनके आसपास देखिए कौन लोग थे। रेने डेस्कार्टेस थे, वो महान तर्कवादी दार्शनिक जिनसे पास्कल सहमत भी थे और कई बातों पर असहमत भी। पियरे डी फरबा थे, जिनके साथ मिलकर उन्होंने मैथ्स में खासकर प्रायिकता सिद्धांत यानी प्रोबेबिलिटी थ्योरी पर काम किया। मैरिन मेडसन का एक पूरा बुद्धिजीवियों का समूह था, उनका सर्कल था। तो माहौल बौद्धिक रूप से तो बहुत बहुत सक्रिय था, लेकिन ये धर्म और विज्ञान का तनाव भी साफ महसूस होता था।
अच्छा, पास्कल के बचपन के बारे में बताइए जरा। मैंने सुना वो बचपन से ही कमाल के प्रतिभाशाली थे।
बहुत ज्यादा, कमाल से भी ज्यादा। जन्म हुआ 1623 में क्लेरमोंट फेरोंड नाम की जगह पर। माँ का देहांत बहुत जल्दी हो गया जब वो सिर्फ 3 साल के थे। उनके पिता एथियन पास्कल, वो खुद भी गणित जानते थे और टैक्स कलेक्टर का काम करते थे, तो उन्होंने बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा खुद ही उठाया।
और वो कोई ऐसी पारंपरिक स्कूल वाली शिक्षा नहीं थी?
मतलब कैसे अलग थी? उनके पिता का तरीका थोड़ा अलग था। उन्होंने शुरू में ब्लेज को लैटिन और गणित से दूर रखा, सोचा कि पहले दूसरी चीजें सीखें। लेकिन कहानी यह है कि 12 साल की उम्र में ही ब्लेज ने खुद बखुद बिना किसी की मदद के ज्यामिति यानी ज्योमेट्री के कई सिद्धांत खोज निकाले।
सच में 12 साल की उम्र में?
हाँ, पिता तो हैरानी रह गए। फिर वो उन्हें पेरिस ले आए और वहां उनकी मुलाकात हुई मेरसेन के सर्कल से, यानी उन बुद्धिजीवियों के समूह से। जरा सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने शांकव परिच्छेदों, कॉनिक सेक्शंस पर एक पूरा शोध पत्र लिख दिया था।
गजब। और फिर वो कैलकुलेटर वाली कहानी, वो तो बहुत मशहूर है।
हाँ हाँ, पास्कलाइन, वो तो और भी कमाल है। सिर्फ 19 साल की उम्र में।
हाँ।
उनके पिता टैक्स कलेक्टर थे, तो हिसाब किताब का काम बहुत मुश्किल और उबाऊ होता था। उनकी मदद करने के लिए उन्होंने दुनिया का पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर बना डाला, पास्कलाइन।
19 साल की उम्र में?
हाँ, और ऐसा नहीं कि बस एक बना दिया। कहते हैं करीब 50 अलग अलग प्रोटोटाइप, अलग अलग मॉडल्स बनाए। अगर आज के जमाने से देखें तो वो उस वक्त के टेक उद्यमी थे। ये कंप्यूटिंग के इतिहास में वाकई एक बहुत बहुत बड़ा कदम था।
तो विज्ञान और गणित में तो वो पूरी तरह डूबे हुए थे, फिर उनके जीवन में ये जो धार्मिक मोड़ आया वो कैसे आया?
देखिए, उनके जीवन में दो बड़े धार्मिक मोड़ माने जाते हैं। पहला आया 1646 में। उनके पिता को चोट लग गई थी, वो घायल हो गए। उनकी देखभाल के लिए दो डॉक्टर आए और वो दोनों जिनसेनिस्ट विचारों के थे। उनके असर में पूरा परिवार आया और पास्कल का झुकाव भी इस गंभीर गहरी आस्था की तरफ हुआ। ये उनका पहला बड़ा धार्मिक अनुभव था, कह सकते हैं।
और दूसरा,
वो जिसे अग्नि की रात कहते हैं, वो क्या था? हाँ, अग्नि की रात, नाइट ऑफ फायर। ये तारीख थी 23 नवंबर 1654। ये पास्कल के जीवन की शायद सबसे ज्यादा निर्णायक घटना मानी जाती है। उस रात उन्हें कोई बहुत गहरा, बहुत तीव्र आध्यात्मिक अनुभव हुआ। ऐसा अनुभव जिसे उन्होंने खुद अग्नि कहा। ये करीब 2 घंटे चला होगा। कहते हैं इसके बाद उन्होंने विज्ञान और दुनियादारी के कामों से लगभग मुंह ही मोड़ लिया और अपना बचा हुआ जीवन पूरी तरह से धर्म और दर्शन को समर्पित कर दिया।
और उन्होंने इस अनुभव के बारे में कहीं लिखा भी था, है ना? कुछ छुपा कर रखा था।
हाँ, ये बड़ी दिलचस्प बात है। उन्होंने उस अनुभव का ब्यौरा कुछ शब्द एक छोटे से कागज के टुकड़े पर लिखे और उसे अपने कोट की अस्तर में सिल लिया। वो कागज उनकी मौत के बाद ही मिला। ये दिखाता है कि वो अनुभव उनके लिए कितना ज्यादा निजी और कितना गहरा था। इसके बाद वो पोर्ट रॉयल का जो जेंसेनिस्ट समुदाय था उसके और भी करीब आ गए।
ये जानना भी शायद जरूरी है कि पास्कल की सेहत अक्सर खराब रहती थी। उन्हें गंभीर सिरदर्द की शिकायत थी, पेट की दिक्कतें थीं। शायद इन शारीरिक तकलीफों ने भी उन्हें इंसान की कमजोरी, नश्वरता, इन चीजों के बारे में सोचने पर मजबूर किया होगा।
निश्चित रूप से आप उनके दर्शन में देखेंगे इंसान की इस नाजुक स्थिति का जिक्र बार बार आता है। एक कहानी ये भी सुनाई जाती है कि 1654 में ही उनकी गाड़ी एक पुल पर दुर्घटनाग्रस्त होते होते बची थी। हालांकि पास्कल ने खुद कभी ऐसा नहीं कहा, पर कुछ लोग मानते हैं कि इस घटना ने भी उनके धार्मिक झुकाव को शायद और पक्का किया होगा।
तो इन अनुभवों के बाद उनकी लेखनी में, उनके कामों में क्या बदलाव आया? उनके सबसे प्रमुख काम कौन से माने जाते हैं?
तो अग्नि की रात के बाद उनका सबसे मशहूर काम सामने आया, प्रोविंशियल लेटर्स लेथर प्रोविंसियालिस। ये 1656-57 के दौरान छद्म नाम से लिखे गए 18 पत्र थे। इनमें उन्होंने बड़ी ही चतुराई और जबरदस्त व्यंग्य के साथ जेंसेनिज्म का बचाव किया और साथ ही उनके जो विरोधी थे जेसुइट्स, उनकी नैतिकता की, खासकर उनकी कैसुइस्ट्री की धज्जियां उड़ा दी।
कैसुइस्ट्री ये क्या चीज है, जरा समझाएंगे?
कैसुइस्ट्री, हाँ, ये थोड़ा जटिल है। सीधा सीधा कहें तो ये मुश्किल नैतिक सवालों को सुलझाने के लिए बहुत ही बारीक जटिल तर्क वितर्क का एक तरीका था। पास्कल का आरोप यह था कि जेसुइट्स इसका इस्तेमाल करके नैतिक नियमों को बहुत ढीला कर रहे थे, मतलब अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ रहे थे। इन पत्रों की भाषा इतनी जबरदस्त थी, इतनी पैनी थी कि इसने फ्रांसीसी गद्य को एक नई दिशा दी। लेकिन जाहिर है
चर्च और जेसुइट्स नाराज हो गए होंगे।
बिल्कुल, बहुत नाराज हुए और नतीजा ये हुआ कि किताब बैन कर दी गई।
और उनकी सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक कृति मानी जाती है पेंजीज, वो क्या है?
हाँ, पेंसीज। पेंसीज का मतलब होता है विचार। ये असल में उनकी मृत्यु के बाद 1670 में छपी। ये कोई पूरी मुकम्मल किताब नहीं है। ये दरअसल ईसाई धर्म की रक्षा में वो एक बड़ी किताब लिखना चाहते थे, उसी के लिए जमा किए गए नोट्स हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं, विचार हैं। इसमें आपको आस्था, तर्क, इंसान की विरोधाभासी प्रकृति कि वो महान भी है और ग्लाइडसाइटिक तुच्छ भी, और ईश्वर के बारे में बहुत गहरे बिखरे हुए से विचार मिलेंगे।
अच्छा, और इसी में वो मशहूर पास्कल का दाव वाला तर्क है जिसके बारे में काफी बात होती है।
बिल्कुल बिल्कुल, पास्कल का दाव इसी पेंसीज का हिस्सा है। ये किताब उनके दार्शनिक मन की शायद सबसे अच्छी झलक देती है। वैसे गणित और विज्ञान में भी उनका काम बहुत महत्वपूर्ण रहा, जैसे अंक गणितीय त्रिभुज पर ग्रंथ ट्रीटीज ऑन दी एरिथमेटिकल ट्राइंगल। इसने संभाव्यता सिद्धांत यानी प्रोबेबिलिटी थियोरी और कॉम्बिनेटोरिक्स की नींव रखी।
कॉम्बिनेटोरिक्स मतलब
चीजों को गिनने और व्यवस्थित करने का गणित, और हाँ, तरल पदार्थों के दबाव पर उनका काम, जिससे वो पास्कल का नियम निकला, वो भी भौतिकी के लिए बहुत अहम है। उन्होंने ये भी दिखाया कि निर्वात यानी वैक्यूम संभव है, जो अरस्तु के उस पुराने विचार के बिल्कुल खिलाफ था कि प्रकृति को निर्वात से नफरत है।
चलिए अब थोड़ा उनके दर्शन के जो मूल विचार हैं उन पर आते हैं। आपने शुरू में कहा था कि उन्होंने तर्क और आस्था के बीच पुल बनाने की कोशिश की, ये कैसे किया उन्होंने, क्या मतलब था इसका?
उनका एक बहुत मशहूर कथन है, शायद सबसे मशहूर, दिल के अपने तर्क होते हैं जिन्हें तर्क नहीं जानता। लुकर आसे रेजों कला रेजों कोने पॉ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तर्क बेकार है या दिमाग का कोई काम नहीं, नहीं ऐसा नहीं, लेकिन उनका मानना यह था कि जीवन की कुछ सबसे गहरी सच्चाइयां हैं, खासकर ईश्वर और आस्था से जुड़ी हुई, वो सिर्फ दिमागी तर्क वितर्क से नहीं पकड़ी जा सकती। उनके लिए दिल यानी अंतर्ध्यान, भावना और एक तरह की भीतरी समझ, वो ज्यादा महत्वपूर्ण थी इन मामलों में।
ये दिलचस्प है। और इंसान के बारे में उनकी क्या सोच थी, वो महानता और तुच्छता वाली जो बात आपने कही?
हाँ, पास्कल ने इंसान को एक बड़े अजीब विरोधाभास के रूप में देखा। एक तरफ हम सोच सकते हैं हम ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने की कोशिश कर सकते हैं, यह हमारी महानता है, लेकिन दूसरी तरफ हम उतनी ही कमजोर हैं, हम गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, बीमार पड़ते हैं और आखिर में मर जाते हैं, ये हमारी तुच्छता है या हमारा दुख है। वो कहते थे कि इंसान इन्हीं दो छोरों के बीच फंसा हुआ है, एक तनाव में जी रहा है, और इस तनाव से सच्ची मुक्ति उनके हिसाब से सिर्फ ईश्वर में आस्था रखने से ही मिल सकती है।
और इसी से जुड़ा हुआ है पास्कल का दाव, पास्कल्स वेजा। ये तर्क सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, क्या आप इसे थोड़ा समझा सकते हैं कि आस्था पर दाव कैसे लगाया जा सकता है?
हाँ, ये उनका सबसे विवादास्पद तर्क भी है, ये बात सही है। देखिए, ये कोई ईश्वर के होने का गणितीय सबूत नहीं है, ये एक तरह की व्यवहारिक सलाह है, एक तर्क है। वो कहते हैं, जरा सोचो, ईश्वर है या नहीं, इस सवाल पर तुम्हें एक दाव लगाना है, चुनना है। अगर तुम ये मानकर जीते हो कि ईश्वर है और वो सचमुच निकलता है, तो तुम्हें अनंत सुख मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा। और अगर तुम मानते हो कि ईश्वर है पर असल में वो नहीं है, तो तुमने बस एक सीमित जीवन जिया, कुछ खास खोया नहीं।
अच्छा,
लेकिन अगर तुम ये मानकर जीते हो कि ईश्वर नहीं है और असल में वो निकलता है, तो सोचो तुमने क्या खो दिया, अनंत सुख खो दिया। तो अगर तुम फायदे और नुकसान का हिसाब लगाओ, तो ईश्वर को मानना ज्यादा समझदारी का, ज्यादा फायदे का दाव है।
लेकिन क्या सच्ची आस्था ऐसे फायदे नुकसान के हिसाब किताब से आ सकती है? ये सवाल तो मेरे मन में भी आ रहा है।
बिल्कुल उठता है, और इसकी आलोचना भी बहुत हुई है। जैसा मैंने कहा, आलोचक कहते हैं कि ये तो आस्था को स्वार्थ पर आधारित बना देता है। ये भी कि ये सिर्फ ईसाई ईश्वर की ही बात क्यों करता है, दूसरे धर्मों के देवताओं का क्या? फिर भी ये तर्क दिखाता है कि पास्कल तर्क का इस्तेमाल करके भी लोगों को आस्था के दरवाजे तक लाने की कोशिश कर रहे थे। उनका एक और विचार था, छिपा हुआ ईश्वर का, देउस अब्सकोंडिडस का, कि ईश्वर जानबूझकर खुद को पूरी तरह से प्रकट नहीं करता, ताकि इंसान अपनी मर्जी से, स्वतंत्रता से उसे चुन सके, तभी तो आस्था का कोई मतलब रहेगा।
अगर हम उनकी तुलना उनके जमाने के दूसरे बड़े विचारकों से करें, जैसे कि डेस्कार्टेस से, उनमें क्या मुख्य अंतर था?
हाँ, डेस्कार्टेस का प्रोजेक्ट क्या था? कि वो सिर्फ तर्क के आधार पर, रीजन के आधार पर ज्ञान की पूरी इमारत खड़ी कर सकते हैं। उनका वो प्रसिद्ध वाक्य है, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। पास्कल ने कहा, नहीं, इतना आसान नहीं है, तर्क की अपनी सीमाएं हैं, दिल की आवाज, आस्था, अंतर्ज्ञान, ये भी जरूरी हैं। तो दोनों तर्क का इस्तेमाल करते थे, पर पास्कल तर्क की शक्ति को लेकर ज्यादा शंकालु थे, उसकी सीमाओं को लेकर ज्यादा सजग थे।
और हॉब्स जैसे विचारक थे जो इंसान को मूलतः स्वार्थी मानते थे, उनके बारे में पास्कल क्या सोचते?
पास्कल का नजरिया मुझे लगता है ज्यादा जटिल था। इंसान स्वार्थी भी है, हाँ, लेकिन उसमें महान बनने की, ऊंचा उठने की क्षमता भी है। वो विरोधाभासों से भरा हुआ है, महान भी, दुखी भी। उनका आस्था पर इतना जोर देना उन्हें अपने कई समकालीन तर्कवादियों से बिल्कुल अलग खड़ा करता है। और कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि उन्होंने बाद के जो अस्तित्ववादी विचारक हुए, जैसे कि कीर्केगार्ड, उनके लिए जमीन तैयार की। वो चिंता, स्वतंत्रता, तर्क की सीमाएं, इन्हीं सवालों से तो चूझे थे।
तो पास्कल की विरासत तो वाकई बहुत फैली हुई लगती है, विज्ञान, गणित, दर्शन, यहाँ तक कि साहित्य में भी।
हाँ बिल्कुल, गणित में संभाव्यता सिद्धांत को देखिए, भौतिकी में तरल दबाव का नियम देखिए, कंप्यूटर विज्ञान की नींव रखने में उनका जो योगदान था, आज भी दबाव की जो इकाई है, यूनिट है, उसे पास्कल कहते हैं। एक पूरी प्रोग्रामिंग भाषा पास्कल उनके नाम पर है।
और साहित्य में उनका क्या असर रहा?
देखिए, वो जो प्रोविंशियल लेटर्स थे, उन्होंने फ्रांसीसी गद्दे को और खासकर व्यंग्य की शैली को एक नया मोड़ दिया। वोल्टेयर जैसे बड़े लेखक भी, जो पास्कल के धार्मिक विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं थे, वो भी उनकी लिखने की शैली के, उनकी भाषा के कायल थे। और पेंजीज तो खैर दर्शन और धर्मशास्त्र में लगातार पढ़ी जाती है, उस पर बात होती है, उसे कोट किया जाता है। अस्तित्ववाद पर भी उसका बहुत गहरा असर माना जाता है।
तो आज के दौर में, आज की दुनिया में पास्कल क्यों प्रासंगिक है? हमें उन्हें क्यों पढ़ना या समझना चाहिए?
देखिए, कई कारण हैं। एक तो ये कि विज्ञान और धर्म का रिश्ता क्या हो, ये सवाल आज भी उतना ही बड़ा है, शायद ज्यादा ही। फिर तर्कसंगत चुनाव यानी रैशनल चॉइस थ्योरी की जो बहसें होती हैं, उनमें पास्कल के दांव का जिक्र आज भी आता है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, इंसान के मन को समझने में, हमारे जो पूर्वाग्रह होते हैं, बायसेस होते हैं, हमारी भावनाएं कैसे हमारे फैसलों को प्रभावित करती हैं, इन सब पर पास्कल ने जो बातें कही थी, वो आज भी चौंकाने वाली लगती हैं, बिल्कुल ताज़ा लगती हैं।
हाँ, उनके कुछ कथन तो ऐसे हैं जो वाकई सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जैसे वो दिल के तर्क वाली बात जो आपने बताई थी।
हाँ, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया को समझने के लिए सिर्फ दिमागी कसरत ही काफी नहीं है। कुछ चीजें हैं जो महसूस करने की होती हैं, मानने की होती हैं, जिनका तर्क शायद दिमाग के पास ना हो।
और वो इंसान सिर्फ एक सरकंडा है वाला कथन, उसका क्या मतलब है?
L'homme n'est qu'un roseau le plus faible de la nature, mais c'est un roseau pensant। मनुष्य प्रकृति में केवल एक सरकंडा है, सबसे कमजोर चीज, लेकिन वो एक सोचने वाला सरकंडा है।
ये इंसान की स्थिति का कितना सटीक, कितना काव्यात्मक वर्णन है। हम शारीरिक रूप से कितने नाजुक हैं, बिल्कुल एक सरकंडे की तरह, जिसे जरा सी हवा का झोंका भी तोड़ सकता है। लेकिन हम सोच सकते हैं, और ये सोचना, यही विचार करने की क्षमता हमें इस विशाल ब्रह्मांड में एक खास जगह देती है। हमारी गरिमा, हमारा गौरव इसी में है।
एक और कथन है उनका जो मुझे बहुत गहरा लगता है। इंसान की सारी मुसीबतें इस वजह से हैं कि वो एक कमरे में अकेला चुपचाप नहीं बैठ सकता। हाँ, टूल मलर देजम व्या दुन सल शोज किए दुन सवार पदमरे आ रपो दाउजुन शाम्र। ये भी बंजीस है। जरा सोचिए, आज के इस भागदौड़ भरे, इतनी सारे विकर्षणों से भरे जीवन पर ये कितनी तीखी टिप्पणी है। हम शायद खुद से भागते हैं, अपने अंदर के खालीपन से, जीवन के बड़े सवालों से भागने के लिए हमेशा कुछ न कुछ करते रहना चाहते हैं, कहीं ना कहीं व्यस्त रहना चाहते हैं। पास्कल कह रहे हैं कि शायद रुकना, सोचना, खुद का सामना करना ज्यादा जरूरी है।
वाकई उनकी अपनी जिंदगी भी कम दिलचस्प नहीं थी, सिर्फ 39 साल जिए, लेकिन कितना कुछ कर गए।
बिल्कुल, और वो भी लगातार खराब सेहत से जूझते हुए। ये भी एक मजेदार बात है कि पेरिस में उन्होंने पहली सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था, जिसे 5 पेनी कोचेस कहते थे, उसको शुरू करने में भी मदद की थी। ये दिखाता है कि वो सिर्फ ऊंची ऊंची दार्शनिक बातें ही नहीं करते थे, व्यवहारिक चीजों में भी उनकी रुचि थी।
लेकिन विवादों से भी तो घिरे रहे वो, आलोचना भी हुई उनकी।
हाँ बिल्कुल, वो प्रोविंशियल लेटर्स की वजह से जेजुएट्स और चर्च के बड़े अधिकारी उनके सख्त खिलाफ हो गए थे। जैसा हमने बात की, जेनसेनिज्म से उनका जो जुड़ाव था वो भी विवादास्पद था, क्योंकि बाद में चर्च ने इस पूरे आंदोलन को ही विधर्मी यानी हेरेटिकल करार दे दिया था। और जैसा हमने कहा, पास्कल के दांव की दार्शनिक आलोचना तो हमेशा से होती रही है। विज्ञान में भी निर्वात यानी वैक्यूम पर उनके जो प्रयोग थे, उन्होंने अरस्तु को मानने वाले वैज्ञानिकों से जबरदस्त बहस छेड़ दी थी।
तो कुल मिला के देखें तो ब्लेज पास्कल एक बेहद जटिल, बहुआयामी और प्रभावशाली शख्सियत थे। ऐसा लगता है जैसे एक वैज्ञानिक का तेज दिमाग और एक संत का संवेदनशील दिल, दोनों उनमें एक साथ मिलते थे।
आपने बिल्कुल सही कहा, उनका जीवन और उनके विचार हमें लगातार उस तनाव की याद दिलाते हैं जो तर्क और आस्था के बीच, हमारी महानता और हमारी सीमाओं के बीच हमेशा मौजूद रहता है। आज जब जानकारी का इतना बड़ा सैलाब है हमारे चारों तरफ, और शायद गहरे अर्थ की तलाश भी पहले से ज्यादा महसूस होती है, पास्कल हमें रुककर सोचने को कहते हैं।
हाँ, वो हमें एक तरह से चुनौती देते हैं कि हम अपनी इस सोचने वाले सरकंडे वाली पहचान को कैसे जिएं, कैसे अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हुए भी अपनी इस अद्भुत सोचने की क्षमता का सही इस्तेमाल करें, और कैसे तर्क के साथ साथ दिल की आवाज को भी सुनना सीखें।
बिल्कुल, और ये वो सवाल हैं जो पास्कल आज भी हमारे लिए छोड़ गए। शायद हर पीढ़ी को, हर व्यक्ति को अपने तरीके से इनके जवाब तलाशने होते हैं।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। यह ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।